उसमें आग लगी है और उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। प्रिंस हैरी एंड मेगन, आपको पता ही है कि अपने सारे टाइटल्स जो हैं वो तो वापस कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अब ये बड़े अरसे के बाद निकल के, ये आपको पता ही है यूके से यूएस के अंदर अब ये दोनों रहते हैं, लेकिन अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े अरसे के बाद नेक्स्ट मंथ यूके का ये टूर कर सकते हैं फॉर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड्स प्लेटिनम ज्वेलरी सेलिब्रेशंस। इनका जो कपल का जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है कि ये कुछ चैरिटीज को यहां पे यूके में और फिर यूके से फिर ये जाएंगे जर्मनी, उनको विजिट करेंगे। तो सबसे पहले ये सितंबर 5 से मैनचेस्टर इंग्लैंड से शुरू करेंगे, वहां पे वन यंग वर्ल्ड समिट जो है उससे खिताब करेंगे। ये यूथ लीडरशिप इवेंट होता है जिसमें कि सारी दुनिया से हजारों ही किस्म के डिफरेंट बच्चे जो हैं वो आते हैं, और मेगन जो है यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी पे की नोट्स अपना देंगी, एड्रेस करेंगी। उसके बाद ये डिसलडॉर्फ जाएंगे जर्मनी में, वहां पे भी एक इवेंट है सितंबर 6 में जो होने वाली है शुरू, इन्वेक्टस गेम जो आपको पता ही है कि प्रिंस हैरी ने शुरू की थी, जिसमें कि ये ऑनर करते हैं सिख सर्विसमैन और यानी कि बीमार, सिख मीन्स नॉट सिख, सिख सर्विसमैन और औरतें जो वूंडेड होती हैं, तो ये उन्होंने शुरू की थी तकरीबन 2014 में, तो उसके लिए जाएंगे। इसके अलावा एक वहां पे चैरिटी है वेल चाइल्ड, उस चैरिटी को भी ये विजिट करेंगे वापस आके यहां पे लंदन में, यानी लंदन आएंगे फिर उसके मैनचेस्टर आएंगे फिर उसके बाद जर्मनी जाएंगे फिर वापस लंदन।
इन लोगों की ना सिक्योरिटी क्योंकि क्वीन ने खत्म कर दी।
जी जी जी
हाँ। वरना ये अब इनका ख्याल यही था कुछ दिनों पहले कि ये दोबारा लंदन जाके सेटल हो जाए, मगर क्योंकि इनकी सिक्योरिटी खत्म कर दी है, सिक्योरिटी टू गेट द सिक्योरिटी इज वेरी एक्सपेंसिव, सो इसलिए अभी मेरा ख्याल फिलहाल ये अमेरिका में
चक्कर चक्कर मारेंगे, फिर अडोरा मारेंगे, लोगों को बताएंगे हम जिंदा हैं अभी, जैसे मैंने आज का टाइगर जिंदा है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रॉयल्स भी दो जिंदा हैं जी ऐसे। अच्छा जनाब, यूके के अंदर जो है अब मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होते जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि वहां पे एयरपोर्ट्स पे फ्लाइट्स काटी जा रही हैं, बंदे वहां पे नहीं है, लेबर की शॉर्टेज हो गई है। अब जनाब वहां पे बसों वाले जो हैं उन्होंने भी जी स्ट्राइक कर दी है। यहां पे एक ये बस ऑपरेटर है अराइव नॉर्थ वेस्ट, इनके पास 4700 बसेस हैं और इसको ओन करते हैं डोशे भान वाले, ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, लेकिन इसके ड्राइवर्स अब कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्ट्राइक पे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ना तो हमारे कंडीशन जो है वो अच्छी है काम करने की और हमारी पेज जो है बेताजा कम है और जो है इसमें हमें कोई रेज नहीं दी जा रही, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है, और जो ये जबकि ये कंपनी जो है इसने अभी 2022 शुरू ही हुआ है तो ओवर $1 बिलियन के प्रॉफिट शो किए हैं। तो वो जो बस ऑपरेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग इतना प्रॉफिट शो कर रहे हो तो उसमें से हमारी भी थोड़ी सी तनख्वाहें बढ़ाओ और हमारी कुछ कंडीशन अच्छी कर दो। सारा पेंडेमिक का जमाना हम एज अ फ्रंट लाइन वर्कर काम करते रहे, हमने कोई छुट्टियां नहीं की तो हमें कोई बेनिफिट्स भी नहीं उसके मिले, तो अब आप हमारे बेनिफिट्स भी बढ़ाएं और हमारी सैलरियां भी बढ़ाएं तो देन वी विल कंटिन्यू। तो अब ये इससे जनाब सारी चीजें इफेक्ट होंगी, तो अब ये सारी चीजें इफेक्ट होगी क्योंकि ये इनमें बहुत सारे जो है रेल के भी ड्राइवर्स हैं। अब आप सोचें कि लंदन तो सारा चलता ही ट्यूब्स के ऊपर है, तो उसके अगर ड्राइवर्स नहीं है, बसों के ड्राइवर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगा। स्कूल नहीं, यहां पर स्कूल नहीं जा सकते, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, दफ्तरों में नहीं जा सकते। आपने देखा ही होगा अगर आप लंदन गए हैं तो वो जो है लड़के लड़कियां यंग सब ट्यूब्स के अंदर एक जगह से निकले हैं, वो वेटर का काम करके फिर सब पे चल रहा है। उसके बाद जी वो सूट पहना है, सूट पहन के क्योंकि कोई किसी जगह जो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी वो लगी हुई है वहां पे, उसने वो बिजनेस सूट लड़की ने पहना है उसी में ट्यूब में ही चेंज किया और वो उधर पहुंच गई है, वहां से उसने निकल के फिर ट्यूब में आना है, फिर अपना शाम का जो फ्रेंड्स अपनी के साथ जाना है वो ड्रेस पहना है वही ट्यूब में चेंज कर रही है और फिर वो अपने तो ये सारा जो है बहुत ज्यादा इनको मुश्किल आ गई है और इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये हम इसको कैसे करें। बहरहाल निगोसिएशंस इनको जल्दी करनी पड़ेंगी वरना वही मजद भाई वाली बात पे या जाम हो जाएगा वहां पे। अच्छा जनाब, यूके यूएस जो है हमारा जो है अंकल जो के जो कंट्री है वो बिल्कुल चैन से बैठना नहीं चाह रही है, वो फिर से सारी दुनिया के अंदर लड़ाइयां शुरू कर रही है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने नैन्सी पेलोसी जो यूएस हाउस स्पीकर थी उनको ताइवान में भेजा था, अब जी एक और बहुत हाई प्रोफाइल जो डेलीगेशन है यूएसए का वो उधर ताइवान जा रहा है, जबकि चाइना ने इनको बहुत सख्ती से मना किया है। सेनेटर एड मर्की अपने साथ चार और लॉ मेकर्स लेके टू डे ट्रिप के ऊपर यहां पे पहुंच गए हैं। चाइना ने एक दफा से फिर से कहा है कि ये हमारा एरिया है ताइवान, हम इसको क्लेम करते हैं एज आवर ओन टेरिटरी, आप इधर मत आएं, मत बढ़ावा दें इनको, मत कहें हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मत इनको वेपन्स दें। यूएसए ने आज फिर से कहा है कि हम बिल्कुल जो है इसको सेपरेट नहीं समझते हैं चाइना से, लेकिन हम ये भी नहीं इजाजत दे सकते हैं कि चाइना अगर इसके ऊपर अटैक करे तो इसके पास जो है अपने आप को डिफेंड करने की सलाहियत ना होए। पायन तुसी की कहना चाह रहे हो? पायन की कह रहे हो? पायन लिसन टू योरसेल्फ हैं क्या? अच्छा जी, हम चाइना की पॉलिसी के साथ हैं लेकिन वेपन्स भी हम देंगे, भाई क्यों, यू नो? तो बस अब ये बिना वजह पोक कर रहे हैं उनको, तो अब वो कह रहे हैं जी नहीं, हम उनके साथ रीजनल सिक्योरिटी, अब ताइवान के साथ रीजनल सिक्योरिटी, वो ताइवान स्ट्रेट जो है वो ऑलरेडी वो चाइना कहता है मेरा हिस्सा है वो सारा कुछ। तो बहरहाल जी ये अब उन्होंने फिर से शुरू किया। अच्छा अब इसके ऊपर क्या हुआ, एसोसिएटेड प्रेस ने जैसे ही ये न्यूज आई कि जी कि ये वहां पे पहुंचे हैं, एसोसिएटेड प्रेस ने ये न्यूज दी है कि चाइना ने फिर से अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो है वहां पर शुरू कर दी है और बहुत ज्यादा इन्होंने फिर से जो है वाशिंगटन को कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारा जो, बल्कि वो एरिया जो कि वाटरवेज मिड लाइन जिसको कहा जाता था, जो कि एक बफर था दोनों साइड्स ताइवान और बेजिंग के बीच में आफ्टर द सिविल वॉर इन 1949, उसमें अब इसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है चाइना ने। और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज जो है आप ताइवान के साथ नहीं रख सकते, यूएसए को कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम हमेशा पीस की बात करते हैं लेकिन आप शायद पीस नहीं चाहते हैं इस रीजन के अंदर, और आप इन चीजों को बढ़ावा ना दें, इनके साथ एंगेज मत करें पॉलिटिशियंस और ताइवान की गवर्नमेंट के साथ, तो हम वरना इसके फिर से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो अमेरिका शायद इसको भी वो गिदड़ भभकियां समझ रहा है, वो समझ रहा है कि जैसे हाँ खली वली, जैसे नैन्सी पेलोसी के वक्त चाइना ने कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कुछ नहीं किया, तो अब भी अगर हम जा रहे हैं तो आई मीन व्हाट्स अ बिग डील, अब कुछ नहीं करेगा। लेकिन पायन कभी कहते हैं, हमारे सियाणे कहते हैं, सोए हुए शेर को मत छेड़ो जी, उसने कभी लड़ाई नहीं की है पिछले कई सालों से, 50 साल में, लेकिन अगर आपने उसको छेड़ दिया है तो फिर वो छिड़ जाएगा है? तो ये जानबूझ के कोशिश कर रहा है आपके ये छिड़े यूएसए अंकल जो ना करो ऐसी बहरहाल जी। अच्छा जी ये जिक्र तो मैं बिल्कुल इस चीज का नहीं करना चाहती थी लेकिन अब ये न्यूज है तो क्या करें, ये इंतहाई खराब न्यूज है लेकिन इसका जिक्र करना ही पड़ेगा। कुछ दिन आपको पहले पता है कि सलमान रुश्दी साहब के ऊपर अटैक हुआ है, जो कि मतलब नहीं करना चाहिए, बहरहाल वो आदमी को इतना पसंदीदा भी नहीं है इसीलिए उसकी न्यूज हम सुनाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन अब जी सारी गन्स जो हैं वो ईरान की तरफ हो गई। क्योंकि अगर आपको याद हो कि जिस वक्त इसने ये वो किताब लिखी थी इंतहाई घटिया द सटैनिक वर्सेस, मैंने वैसे उसके 7 पेजेस ही पढ़े थे और मुझे उल्टी आने लगी थी, इतनी गंदी उसने किताब लिखी हुई है, एंड आई जस्ट सेड कि मैं अब इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी, इतनी बकवास किताब है वो। तो वो जब सटैनिक वर्सेस लिखी थी तो ईरान वाहिद कंट्री था जिसने कहा था, फिर उसके बाद एक दो और कंट्रीज बीच में आ गए थे जिन्होंने कहा था कि हम इतने मिलियन डॉलर्स देंगे उस आदमी को अगर ये इसका सर काटेगा। अच्छा अब जब इसके ऊपर अटैक हुआ है, जब ये न्यूयॉर्क में था एक लेक्चर देने वाला था, तो सारे लोगों का पहला जो शक है वो गया जी उसकी तरफ, ईरान की तरफ, के जी ईरान ने ये करवाया होगा। अच्छा आज जो है इसके ऊपर बात करते हुए जो इनके जो हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर नसर कनानी, उन्होंने आज कहा है जी कि वैसे तो जो इसके ऊपर अटैक हुआ है वो इसकी अपनी और इसके सपोर्टर्स की डूइंग है और हम जो हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है इस अटैक के साथ, ये हमारे में से कोई नहीं था, लेकिन जिस वक्त आप रेड लाइंस क्रॉस करते हैं, जब आप 1.5 बिलियन मुसलमानों को आप पोक करते हैं, उनको इस तरह का नाउजबिल्ला रसूल के जो जिस आदमी ने खिलाफ चांद में गुस्ताखी की हो उसको आप प्रोटेक्शन और वो देते हैं तो उनका गुस्सा जरूर आएगा, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल ये हक नहीं पहुंचता कि आप बगैर किसी प्रोब किए हुए ईरान को टारगेट बनाएं। हुआ ये कि जो इसका जो अटैकर है हादी मतर, 24 इयर्स उसकी एज है, उसने वैसे तो अदालत के अंदर उसको पकड़ लिया है और उसने नॉन गिल्टी अपने आप को जो है वो प्लीड किया है, लेकिन वेस्ट ने कहा है जी कि ये इसके अंदर ईरान का हाथ हो सकता है। उसके ऊपर ये इन्होंने कहा है फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन ने कि कोई ईरान का हाथ शात नहीं है इसके अंदर और कोई भी हम जो है हमारे अपने जो है आपने जो रुश्दी है उसने इस्लामिक वैल्यूज को अंडरमाइन करने की कोशिश की थी और उस वक्त जो है आयतुल्ला खामनाए उन्होंने जो है ये कहा था कि जी इसको जो है वो इसका सर जो है वो लेकर आया जाए, लेकिन बट दैट डजेंट मीन कि ये हमने इस वक्त कोई ऑर्डर्स दिए हैं। सलमान रुश्दी के जो एजेंट हैं एंड्रयू वाइली, उन्होंने कहा है कि उसकी है तो बड़ी सीवियर इंजरीज लेकिन अब वो स्टेबल होता जा रहा है और उसको अब वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। और जो है अब वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है। और आपको पता ही होगा कि सलमान रुश्दी को जिस दिन से इसने वो खराब किस्म की किताब लिखी थी, 30 years, इट्स बीन 30 years, तो 30 years से इसको डेथ थ्रेट्स मिलते थे। तो वही ईरान ने कहा है कि अगर तुम ऐसे अपने आप को एक्सपोज कर दोगे और ऐसे बाहर आ जाओगे लोगों के सामने तो फिर लोगों का गुस्सा तुम्हारे ऊपर आएगा, तो जो तुमने काम किया है उसके लिए। और आपको बड़ी हैरत होगी ये बात सुन के कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज जहां पे कि सैटेनिक वर्सेस जो है वो बैन है, उसके अंदर ईरान और पाकिस्तान में तो है ही है, इंडिया तक में बैन है, इंडिया में भी ये बैन है ये किताब। तो ये अब जो है वो, तो वो उनकी जो एक्स वाइफ है पद्मा लक्ष्मी, जो कि वो भी थी मॉडल भी थी, उन्होंने कहा है कि जी मैं बड़ी कंसर्न्ड हूं अपने एक्स हस्बैंड के लिए। भाई क्यों, थोड़ा तेन तो तल्लुक ही नहीं है बाजी, तुम अपने कम नल कम रखो। हाँ जी, अब सारी दुनिया का बड़ा कंसर्न आ गया उसके लिए ऐसे। अच्छा जनाब, आज है 15th August और आपको पता ही है कि 15th August लास्ट ईयर को तालिबान जो है उसने अपनी गवर्नमेंट जो थी इस्टेब्लिश की थी काबुल के अंदर, तो उसी की उन्होंने आज फर्स्ट एनिवर्सरी जो मनाई है। और आज बहुत सारे लोग इसमें वाइट वैसे तो बैनर्स लेके फिर रहे थे, लेकिन अपने दूसरे वेपन्स भी लेके फिर रहे थे और बाइसिकल्स पे थे और कुछ पैदल थे, मोटरसाइकिलों पे थे, और कुछ लोगों ने मार्च किया जो पुरानी यूएस एम्बेसी थी उसकी तरफ और वहां पर नारे लगाए लॉन्ग लिव इस्लाम डेथ टू अमेरिका। और वैसे तो इस कंट्री को, अफगानिस्तान को बिल्कुल इंटरनेशनली आइसोलेट किया हुआ है, और लेकिन फिर भी आज सारा कुछ बंद रहा वहां पे, कोई स्कूल्स भी नहीं थे क्योंकि तालिबान ने आज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस की हुई थी। और उन्होंने कहा है कि इट्स अ प्राउड डे ऑफ ऑगस्ट 15th, फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रिटर्न टू पावर। अब्दुल वाहिद रायान जो कि हेड हैं तालिबान रन बख्तियार न्यूज एजेंसी के, उन्होंने कहा है कि रिलायंस ऑन गॉड एंड सपोर्ट ऑफ पीपल, उनकी वजह से हमको ये इतनी शानदार जो है विक्ट्री मिली है। और इसके अलावा जो तालिबान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब्दुलसलाम हनफी हैं, उन्होंने नेशन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो है हमने, उसने अमेरिका को डिफीट किया और उसको जो है आजादी मिली, तो ये दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट। तो ये जो है सेलिब्रेशन की बात है। अच्छा जनाब, अल जजीरा की आज एक रिपोर्ट है और अल जजीरा की इस रिपोर्ट का हेडिंग है अटैक ऑन ड्रीम, मुस्लिम्स इन फियर एज इंडियन डेमोक्रेसी टर्न 75। एंड दिस आर्टिकल इज रिटन बाय वेले सिंह। वेले सिंह जो हैं उन्होंने आज बड़ी ही ये एक जबरदस्त आर्टिकल लिखी है अल जजीरा में, और इसके मुताबिक वो कहते हैं जी वैसे तो हिंदुस्तान 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, लेकिन इस स्टेट के अंदर मुसलमान अपने आप को फील करते हैं एज इफ दे आर इन अ स्टेट ऑफ सीज स्टिल। उसकी वजह यह है कि जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है उस वक्त से, 2014 में, उस वक्त से अब तक स्टेट के जो अदारे हैं वो हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म को जो है वो प्रमोट करते हैं, और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो हैं कॉन्स्टेंटली इस फियर में रह रहे हैं कि कब इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली हिंदू स्टेट, और मुसलमान जो हैं उनके अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस में और प्राइवेटली भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई जाती है, चाहे उनके कपड़े हैं, चाहे उनका फूड है, चाहे उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सबको जो है यहां पर खराब किया जा रहा है। तो कहते हैं जी फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक रूलिंग जो क्लास है वो ऐसी है कि वो चाहती नहीं है कि मुसलमान आगे बढ़े, और उसका सबसे बड़ा जो प्रूफ है वो ये है कि उनकी अपनी खुद बीजेपी की पार्टी में एक भी मुसलमान पार्लियामेंटेरियन इस वक्त नहीं है। अल जजीरा ने इस मौके के ऊपर जो है ऑथर एंड जर्नलिस्ट धरिंद्रा के झा जो है उसका इंटरव्यू लिया है, और धरिंद्रा के झा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि मुसलमान जो हैं इस मुल्क के उनको सेकंड क्लास मुस्लिम्स का दर्जा दिया जाएगा, और ये जो है और इंडिया जो है ऑलरेडी इसमें आगे आगे चल रहा है। उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी जो है उसको आज ट्रेस किया, उन्होंने कहा कि अगर आप देखें कि आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, 2018 में एक लॉ पास किया गया ट्रिपल तलाक के ऊपर, जिसको कि शरिया लॉ जो था वो मानता नहीं था, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया बस गुस्से में या नशे में या कैसे भी, जो कि इस्लाम में उसकी कंडीशन नहीं मानी जाती है, फिर भी इंडियन कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, उसने अगर ट्रिपल तलाक दे दी है तो बस इसको माना जाएगा। जो क्लर्जी थे, मुस्लिम क्लर्जी, उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत इसके ऊपर आवाज उठाई कि नहीं, तलाक देने की शर्तें होती हैं जो कि इस्लाम ने दी हैं, तो उसके मुताबिक हम चलें। बहरहाल जी, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई भी नहीं कहा। इसके अलावा जी, बहुत सारी जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ अल जजीरा विच इज रिटन बाय वेले सिंह, वहां पे जो है लव जिहाद के लॉज पास किए गए हैं, कि कोई भी हिंदू लड़की को जबरदस्ती कोई मुसलमान लड़का कन्वर्ट करके शादी नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको मारा जाएगा। इसी तरह 2019 में वो कहते हैं जी सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास किया गया है, जिसमें के उन्होंने कहा जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए दिल्ली के अंदर, और वहां पर बहुत सारे कोई 53 के करीब लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बेचारे जाहिल किस्म के जो गांव में रहते हैं उनसे जब मांगे गए कि जी पेपर बताओ तो वो अपने पेपर नहीं दिखा सके प्रॉपर्टी के। इसके अलावा कर्नाटका के अंदर जी उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिजाब जो है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जो रूलिंग आई थी उसको खत्म कर दिया है कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। 2021 में आसाम के अंदर जो है ये लॉ लेकर आया गया है कि कोई भी आसाम के अंदर अब मदरसा नहीं चलाया जा सकेगा। इसके अलावा जी वो कहते हैं अभी सिर्फ लास्ट वीक ही वाराणसी में जहां से के लड़ते हैं, जहां से के इलेक्शंस मोदी जी खुद प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लड़ते हैं, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वहां से उन्होंने 32 पेज ड्राफ्ट निकाला है एक हिंदू राष्ट्र के लिए, जिसका के एम है मुसलमानों और क्रिश्चियंस को उनका राइट टू वोट नहीं होगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इसके अंदर इनका राइट टू वोट ले लिया जाएगा। इसके अलावा 2019 में वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो राम मंदिर का किस्सा चला था अयोध्या के अंदर, बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हालांकि यहां पे कोई प्रूफ नहीं मिला कि कभी यहां पे मंदिर था, लेकिन फिर भी वहां पे न्यू हिंदू सेंटिमेंट को सामने रखते हुए उन्होंने कहा जी नहीं यहां पे मंदिर बनेगा, और जो है उसके थोड़े ही दिनों के बाद जो है मोदी जी ने वो मंदिर की उधर रखी फाउंडेशन रखी और मंदिर बनाया गया, और मुसलमानों को 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर फ्रॉम बाबरी मॉस्क जो साइट थी उससे एक जमीन दी गई, लेकिन वो अल जजीरा की ये रिपोर्ट कहती है वेले सिंह की कि 3 साल हो गए हैं और उसके ऊपर काम भी नहीं शुरू हुआ है। और इसके अलावा जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे उनकी रेजोल्यूशन थी कि जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लिया जाए, तो आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था। तो ये आर्टिकल कहता है जी कि अगर ये हिंदू राष्ट्र अभी भी ना माना जाए तो फिर क्या माना जाए इसको, तो डू दे हैव रीजन टू सेलिब्रेट 75th बर्थडे और नॉट।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर।
यूके स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दिया वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा। कैनेडा विच खालिस्तान दिया वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा। ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दिया वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नू गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्युनिटी सेंटर विच पैणगियां। होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2666।
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards once again in Canada on 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
Taza Milton Halal Food Festival,
August 21st, Sunday from 12 p.m. to 10 p.m.
Free entry, free parking, musical show with the Fakhir live performance. आइए 75th सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मिल के मनाते हैं मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क 805 सेंटर मारिया बुलेवार्ड इन मिल्टन। फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग कॉल अमेर शमसी
416-662-7861। वेलकम बैक अगेन। 6:19:18 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और लीजिए साहब
हाँ जी, इंडियन एक्सप्रेस की आज एक न्यूज है और इंडियन एक्सप्रेस की इस न्यूज के मुताबिक कल क्या हुआ है कि कल बीजेपी ने जाहिर है कि 15 अगस्त के लिए कुछ उन्होंने बातें की कि भाई जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो नेहरू जी का किरदार ठीक नहीं था, गांधी जी का किरदार ठीक नहीं था, ये चीजें ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। अब कांग्रेस जो है इसके ऊपर बड़ी भड़क गई है। कांग्रेस की जो आज प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है नेहरू और गांधी का जो रोल नहीं मांग रही है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री है फॉर पॉलिटिकल गेन्स, क्योंकि इन फ्रीडम फाइटर्स की जो ग्लोरियस अचीवमेंट्स हैं उनके बगैर हम आज 75th बर्थडे इंडिया का नहीं मना सकते थे। वो कहते हैं जी कि 75 ईयर्स आजादी को ये जो करंट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड गवर्नमेंट है, ये हेल बेंट है कि ये इसको मामूली दिखाए उन सेक्रीफाइसेस को जो इन जैसे टावरिंग पर्सनालिटी जिसमें गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद वगैरह शामिल थे, ये जो कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है इट इज जस्ट अ डॉक बेस्ड ऑन लाइज। उन्होंने कहा जी कि बीजेपी का ये जो अभी लेटेस्ट वीडियो क्लिप ये जो आया है जिसमें कि उन्होंने क्वेश्चन किया है नेहरू का रोल आजादी के अंदर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो क्लिप निकाला था बीजेपी ने उसमें उन्होंने पूछा था वेयर वर दोज पीपल हु हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिविसिव फोर्सेस। तो सोनिया गांधी जी कहते हैं यही वो लोग थे, वो डिविसिव फोर्सेस जो गोरे की थी उसके खिलाफ लड़े थे, तो गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद जैसे लोगों को छोटा दिखा के आप हिंदुस्तान की आजादी को बड़ा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए आज कांग्रेस जो है उसने बहुत जो है वो भड़की हुई थी। उन्होंने कहा जी कि फ्रीडम फाइटर्स में ये सबसे आगे आगे थे, तो नेहरू का खासतौर पर, नेहरू को बहुत क्रिटिसाइज इस क्लिप के अंदर किया गया था, तो उन्होंने कहा जी कि नेहरू के किरदार को आप छोटा कैसे दिखा सकते हैं जो कि इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये इसके ऊपर जो है फिर से अब काफी मारामारी चल गई है। अच्छा अच्छा जनाब, आज एक जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ा है मुंबई बेस्ड रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल जो है उसके हॉटलाइन पे एक मैसेज आया था, थ्रेट्स आए थे जिसमें कि बहुत सारी बातें कही गई थी कि जिसमें कि हम नुकसान पहुंचा सकते हैं हॉस्पिटल को, मुकेश अंबानी को, क्योंकि रिलायंस का ये जो हॉस्पिटल है मुकेश अंबानी का है, तो वो कहते हैं जी हम कर सकते थे। तो यहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे उन्होंने फिर ये मैटर डीबी मर्ग पुलिस स्टेशन को ये दिया, उन्होंने एक FIR लिखी और एक सस्पेक्ट जो है उसको दाहीसर से मुंबई से पकड़ा है। और इससे पहले भी फरवरी 2021 में एक जेलेटन लेडन एक स्कॉर्पियो एक बिच्छू जो था मुकेश अंबानी के ऑफिशियल रेजिडेंस जो है अंटीला उसके बाहर रखा गया था और उसमें जो एक गाड़ी एक खास यूज की गई थी जो कि मनसुख हिरन की थी जो कि NRI था और जो कि बाद में मरा हुआ पाया गया। तो जब NIA के पास ये आई थी इंक्वायरी तो उसके अंदर फिर उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर्स थे सचिन वाजे और सुनील माने और फिर वो जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे प्रदीप शर्मा, इन सबको अरेस्ट किया गया था। तो ये अब दूसरी दफा ऐसे हुआ है कि इनको थ्रेटनिंग कॉल्स जो हैं मुकेश अंबानी को आई हैं। अच्छा जनाब, आज हम 14 अगस्त तो कल गुजर गया लेकिन जिना साहब के ऊपर आज एक हम बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट करने वाले हैं। ये वो रिपोर्ट है जो कि जाहिर है कि उनके लीडरशिप, उनके विजन, उन्होंने जैसे काम किया, एक अलहदा मुल्क मुसलमानों के लिए बनाया, उनके ऊपर तो आपने बहुत सारी की होंगी, ये रिपोर्ट आपने कभी नहीं देखी होगी। आज हम ये स्पेशल रिपोर्ट और ये स्पेशल ट्रिब्यूट जिना साहब को देंगे, बट एंड पे, बिल्कुल अपनी खबरों के एंड पे। ये पाकिस्तान के अंदर कुछ क्वार्टर्स में बहुत ज्यादा कंसर्न आना शुरू हो गया है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे तैयारे अब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आने शुरू हो गए हैं। आज एक हिंदुस्तान का हैदराबाद जाने वाला था एक तैयारा जो कि कराची के जिना एयरपोर्ट पे फिर से आके रुका है। वैसे तो CAA के स्पोक्स पर्सन ने इसको बहुत ही अंडरप्ले किया है इस चीज को कि ये तो जनाब एक इंटरनेशनल चार्टर प्लेन था और ये तो जो है वो इंडिया से फ्लाई भी नहीं कर रहा था तो जनाब फिर हैदराबाद कैसे जा रहा था, तो इसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये जो स्पेशल प्लेन था ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से उड़ा था, इसके अंदर 12 पैसेंजर्स थे, फिर पता चला जी इसमें खराबी हो गई है, ये दुबई जा रहा था और इसको फिर उतारा वहां पे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां से ठीक करके इसको भेजा। इससे पहले भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जुलाई 5 को भी स्पाइस जेट का एक दिल्ली से दुबई जो तैयारा जा रहा था वो कराची पे उतरा था क्योंकि जो पायलट था उसने कहा जी कि मुझे टैंक के अंदर कुछ जो है खराबी नजर आ रही है वो फ्यूल टैंक में, تو یہ وہاں پہ کراچی میں اترا, پھر اس کو فکس کیا, بھیجا. اسی طرح جولائی 17 کو ایک اور شارجہ جا رہا تھا حیدرآباد سے, انڈیگو کا پلین 6E1406, اس کو بھی جو ہے یہاں سے فکس کر کے حیدرآباد بھیجا گیا تھا, اور اب یہ تیسرا طیارہ جو ہے یہ اترا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پے در پے انڈین طیارے کیسے خراب ہو رہے ہیں, اور یہ کیسے جنا ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں, اور کیسے یہ جو ہیں ایک مہینے کے اندر یہ تین جو ہیں کس سے ایسے ہو گئے ہیں. تو ود ان جسٹ اے اسپین آف ون منتھ یہ کیسے, یہ ساری چیزیں کیسے چل رہی ہیں. تو یہ اس پہ بہت زیادہ شک آ رہا ہے کہ یہ کیوں انڈین طیارے جو ہیں آ کے اتر رہے ہیں کراچی کے اندر, واٹس گوئنگ آن. تو یہ اب اس کا جواب تو آپ کے پرائم منسٹر ہی دے سکتے ہیں, ہم کیا دے سکتے ہیں. آج جناب بہت بڑی خبر بتائی ہے, پی ایم ایل این کے لیڈر جو ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں جاوید لطیف صاحب, انہوں نے کہا جی فائنلی جڑا ہے شیر واپس آ رہا ہے. جی انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب جو ہیں سپٹمبر میں واپس آ سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں کے ڈیسیجن جو ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں. وہ آج ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں لوگوں نے ان سے پوچھا, جرنلسٹوں نے, کہ ڈاکٹر نے تو ان کو آرام کے لیے کہا, تو انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹروں کے جو ہیں وہ فیصلے وہ تو بدلتے رہتے ہیں. 2018 میں آپ کو پتا ہی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو 7 سال کی پرزن دی تھی العزیزیہ اسٹیل مل کے قصے میں, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹوٹل یہ 11 سال کاٹیں گے, کیونکہ 1.3 بلین جو ایون فیلڈ پراپرٹیز کے جو ریفرنس ہیں اس میں بھی کچھ ان کا جواب صحیح نہیں آیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے جو تھی وہ ڈالی تھی 2019 میں ایک پیٹیشن کہ میں بہت بیمار ہوں, مجھے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لندن جانے دیا جائے. November 19, 2019 کو یہ چلے گئے تھے, اور اس دن سے یہ باہر ہیں. لیکن اب جی جاوید لطیف صاحب کا کہنا ہے کہ اب یہ ڈاکٹر ان کو کہہ رہے ہیں اب آپ پاکستان جا سکتے ہیں. ہاں جی, تو یہ اب سپٹمبر میں یعنی کہ نیکسٹ منتھ آپ آ سکتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا کہ پنجاب کے, پاکستان کے پنجاب کے چیف منسٹر جو ہیں پرویز الہی صاحب نے اپنی کیبنٹ اناؤنس کی تھی 21 ممبر کی, لیکن آج انہوں نے پھر سے میجر جو ہیں چینجز کی ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاورز ہیں میرے پاس انڈر سیکشن 3(5) آف پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011. اس میں منسٹر آف پبلک جو پرزیکیوشن اینڈ کوآپریٹو جو ہیں محمد بشارت راجا, ان کو پارلیمنٹری افیئرز اینڈ انوائرمنٹ پروٹیکشن اینڈ کوآپریشن کا منسٹر بنایا گیا ہے. منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز خرم شہزاد کو اب دیا گیا ہے منسٹری آف لا. منسٹر فار پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جو منسٹر تھیں ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کو اب دیا گیا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا پورٹ فولیو. محمد اکبر جو ہیں ان کو پرائمری یا سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا اس کے ساتھ ایڈیشنل وہ دیا گیا ہے پورٹ فولیو. منسٹر فار ہائر ایجوکیشن راجا یاسر ہمایوں جو ہیں ان کو ہائر ایجوکیشن کا پورٹ فولیو دیا ہے. اینڈ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بریگیڈیئر ریٹائر محمد مصدق عباسی جو ہیں ان کو ایڈیشنل پورٹ فولیو دیا گیا ہے آف پبلک پروزیکیوشن. اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر ارسلان خالد جو ہیں ان کو بھی اب جو ہے اسپیشل اسائنمنٹس دی گئی ہیں. تو لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ 21 دن کے بیچ میں اور 21 ممبر کا جو ہے یہ کیسے یہ پھر سے یہ چینجز جو ہیں یہ آ گئی ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہیں شہباز گل صاحب, آپ کو پتا ہی ہے ان کے اوپر سیڈیشن کے کیس اب لگا دیے گئے ہیں کہ تم نے اسٹیٹ کی اگینسٹ بولا ہے. تو اب اس کے لیے جو ہے انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاکہ یہ ایف آئی آر ان کے خلاف جو ہے ختم کی جائے. شہباز گل کا کہنا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے نل اینڈ وائڈ کی جائے کیونکہ یہ بالکل ایف آئی آر جو ہے بیسڈ آن میلس ہے. اسلام آباد پولیس نے یہ جو کیس تھا یہ گورنمنٹ کو لائلٹی شو کرنے کے لیے میرے خلاف کیا ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو پولیٹیکل ایجنڈے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کیا ہے. اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ ہم شہباز گل کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, بالکل فائڈ اس کے پیچھے سارے جو ہیں وہ ارادے ہیں, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ان کو ٹارچر کیا جائے گا کیونکہ یہ بیچارہ ویک آدمی ہے, اوورسیز پاکستانی نہیں ہے, یہ یہاں کی بدماش پالیٹکس جو ہے ملک کی اس کو سمجھتا نہیں ہے, تو اس لیے اس کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. تو ان سے پوچھا گیا فواد چودھری صاحب سے کہ اس نے اپنا فون کیوں نہیں دینے سے انکار کیا, وہ کیوں اپنا سیل فون جو ہے یوز نہیں کر رہا تھا ٹی وی چینل پہ. انہوں نے کہا جی اس وقت محرم 10 تھی اور سارے جو تھے نیٹ ورکس وہ بند تھے, اس لیے وہ گھر کا لینڈ لائن یوز کر رہے تھے, اس کے اندر کچھ ایسی سازش نہیں ہے کہ وہ اپنا سیل فون کیوں نہیں یوز کر رہے تھے یا دے کیوں نہیں رہے تھے, پھر اس کے ڈرائیور کو مار پیٹ کے اس کا سیل فون لیا, تو وہ سیل پہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے, سروس ہی نہیں تھی سیل فون کی, تو کیسے کرتے. بہرحال جی یہ پھر سے اب یہ شروع ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جی اس نے اسپیشل پروٹیکٹیو بیل, اب آج مجھے سمجھ نہیں آئی اسپیشل پروٹیکٹیو بیل کیا, بیل تو بیل ہی ہے یعنی کہ اور 10 بندے اس کی حفاظت پہ لگا دیے ہوں گے, اسپیشل پروٹیکٹیو بیل دی جی ہے یہ اس کو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عطا تارڑ صاحب کو فار 14 ڈیز کیونکہ ان کے اوپر الزام لگایا تھا جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے پرویز الہی کے, اس نے پنجاب اسمبلی میں اٹیک کیا تھا اور اس نے ہولیگینزم کی تھی اپریل 16 کے جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے اندر. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق, انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ہے وہ یہ ریلیف دی جائے, اور انہوں نے کہا تھا تارر صاحب نے کہ یہ ساری جو میرے خلاف پٹیشنز ڈالی گئی ہیں یہ فریولس ہیں اور میلافائڈ ہیں, اور ان کے جو ہیں چیف منسٹر کے اور اس کی کیبنٹ کے الٹیریئر موٹیوز ہیں پنجاب کے اندر, اور میرا جو انڈر آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن میرا جو رائٹ ہے ٹو فار فیئر ٹرائل وہ مجھے ملنا چاہیے جو کہ مجھے نہیں مل رہا کیونکہ پولیس جو ہے لاہور کی وہ مجھے الاؤ نہیں کر رہی ہے. تو ماشاءاللہ سے تارر صاحب کی فیملی کا اگر لوگوں کو بیک گراؤنڈ پتا ہے تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کون ہے, اور ان کے رشتہ دار جو ہیں نواز شریف صاحب کی فیملی کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اچھا جناب پاکستان کی جس گاڑی کا ذکر کیا عرفہ باجی نے کہ پہلی الیکٹرک کار بنائی جائے گی, میں تھوڑی سی اس کی صرف اور ڈیٹیلز دوں گی. یہ گاڑی جو ہے اس کا نام ہے نور E75, اور جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ دیکھیں گے بڑی خوبصورت گاڑی ہے. دس از بینگ ڈیولپڈ بائی ایک این جی او ہے ڈائس فاؤنڈیشن, انہوں نے لوکل اکیڈیمکس جو ہیں ان کے ساتھ اور انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے کیا ہے. یہ 5-سیٹر ہیچ بیک ہے اور 127 کلومیٹرز پر آور چل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو مارکیٹ میں ہم انٹروڈیوس کریں گے 2024 میں, اور 8 آورز کی یہ جو ہے چارجنگ کر کے اس کے بعد 210 کلومیٹرز چل سکتی ہے. اس کے جو فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں ڈاکٹر خورشید قریشی, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہوگی, نہ صرف یہ کہ کلائمیٹ چینج میں جو اتنا پولوشن آتا ہے اس میں یہ ہیلپ کرے گی, بلکہ یہ جو نان رینیویبل فیول کنزمپشن ہے اس سے بھی پاکستان کی جان چھڑائے گی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آگے جاتے ہوئے سیڈان اور ایس یو ویز جو ہیں وہ بھی ڈیولپ کریں گے. انہوں نے کہا جی ہونڈا اور نسان کی گاڑیاں اس وقت 35,000 to 40,000 یو ایس ڈالرز کی بکتی ہیں, جبکہ نور E75 کی پرائس بہت ہی کم ہوئے گی. اس کے 60% پارٹس جو ہیں وہ لوکلی مینوفیکچر کیے جائیں گے, سو اٹ ول بی اے گیم چینجر فار پاکستان. بیوٹیفل کار, بیوٹیفل, ویری نائس, ویری ویری نائس. اور اگر اب اس میں ایس یو وی بھی آ گئی, سیڈان بھی آ گئی ماجد بھائی, پھر تو کیا بات ہے.
مگر اب ان لوگوں کو جو پاکستان میں پیسے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ والی گاڑیاں خریدیں,
یہ گاڑیاں خریدیں, الیکٹرک کار. ساری دنیا الیکٹرک کارس کر رہی ہے,
نہیں الیکٹرک کارس بھی وہ باہر سے آتی ہیں نا.
ہاں ہاں,
تو کیونکہ پیسہ تو لوگوں کے پاس بہت
بہت ہے,
تو اس لیے کہ وہ اسی کو فوقیت دیں.
تو فیوچر یہی ہے پاکستان میں اب, تو یہ ہے. تو انشاءاللہ اینڈ جناب فہد مصطفیٰ صاحب, آپ کو پتا ہی ہے کہ ابھی ایک لیٹسٹ فلم آئی تھی ان کی قائد اعظم زندہ ہے, اس میں انہوں نے ایک کاپ کا رول پلے کیا تھا. تو اب سندھ گورنمنٹ,
قائد اعظم زندہ باد,
تو اب ان کو آنری ایس پی بنایا گیا ہے. اور یہ جو سندھ کے آئی جی تھے انہوں نے جو ہیں غلام نبی مینن, انہوں نے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ انڈیپینڈنس کے موقع پہ مجھے ایس پی بنانا بڑی خوشی کی بات ہے, آپ لوگوں نے جو میری فلم کو لو اور سپورٹ شو کیا میں اس کے لیے بڑا آپ کا آبھاری ہوں, اور انہوں نے ہوپ کیا کہ میں اپنے ملک کو ایسے ہی سرو کرتا رہوں گا. اینڈ جناب 13 اگست کو, کیونکہ اب ہم یہاں پہ تھے نہیں 13th اور 14th کو, تو 13th اگست کو جو ہے نازیہ حسن کی جو تھی وہ تھی ڈیتھ اینیورسری, تو نیو یارک میں جو ٹائم اسکوئر ہے جی اس پہ اسپوٹیفی جو ہے اس نے ان کا پوسٹر لگایا ہوا تھا, کیونکہ آج بھی اسپوٹیفی کا کہنا ہے کہ لوگ ان کا جو انہوں نے کام کیا ہے آفٹر ایون 22 ایئرز پیپل اسٹل لو ہر, جو انہوں نے پاپ میوزک میں کام کیا, تو جی ٹائم اسکوئر پہ ان کا پوسٹر دکھائی دیا. اینڈ جناب ہندی فلم انڈسٹری اتنا اچھا کام نہیں کر رہی ہے, اکشے کمار کی رکشا بندھن اب سیکنڈ ڈے, دس از جسٹ دا سیکنڈ ڈے, اور سیکنڈ ڈے میں 30% اس کی جو ہے وہ گر گئی ہے جو ہے وہ سیلز. اور یہ فلم بنائی تھی آنند رائے نے, اور اس کو جو ہے فرسٹ ڈے کو انہوں نے 8.2 کروڑ بنائے تھے, سیکنڈ ڈے میں 6 کروڑ بنائے ہیں, اور بہت ہی وچ از نتھنگ. اور بہت سارے تھیٹرز جو ہیں انڈیا میں 1,000 شوز جو ہیں شوئنگز جو ہیں اس فلم کی وہ کینسل ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ لال سنگھ چڈا جو کہ عامر خان کی لاسٹ ویک میں آئی تھی, ایک ہفتے میں ٹوٹل اس نے 50 کروڑ پورے ملک سے بھی اور دنیا ساری سے بھی مل کے کمائے ہیں, تو یہ بھی بالکل بری طرح سے فیل ہو چکی ہے. اور لال سنگھ چڈا کے بھی بے شمار شوز جو ہیں ڈفرینٹ سینماز نے سب کینسل کیے ہیں, تو دونوں یہ فلمیں بری طرح سے پٹی ہیں. اینڈ جناب بابر اعظم 27 ایئرز اولڈ, ان کو 75th اینیورسری آف پاکستان کے اوپر انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر ان کو ستارہ امتیاز جو ہے وہ اب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہی از دا ینگسٹ پاکستانی ٹو گیٹ دس اوارڈ. اس کے علاوہ بسمہ معروف جو کہ ویمنز ٹیم کی کیپٹن ہیں ان کو تمغہ پاکستان دیا جائے گا. بابر اعظم جو ہیں وہ اس وقت آئی سی سی او ڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی کے ٹاپ رینکنگ بیٹسمین ہیں اور تھرڈ ہیں ٹیسٹ چارٹس کے اوپر. لاہور سے ان کا تعلق ہے اور ان کی او ڈی آئی ایوریج جو ہے 59.2% ہے, وچ از ویری نائس. اینڈ جناب آور لاسٹ نیوز بفور وی گو ٹوڈز اے اسپیشل رپورٹ, پاکستان جو ہے اس کا جو ہے کل سے ٹیوزڈے سے میچ شروع ہونے والا ہے نیدرلینڈس کے ساتھ, اور اس کو یہ کوالیفائنگ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ پوائنٹس چاہیے. یہ 3 میچ او ڈی آئی ہے اور یہ ان کے لیے بہت ہی کروشل میچ ہے کیونکہ یہ ان کے لیے جیتنا ضروری ہے ورلڈ کپ میں جانے کے لیے. اور ویسے تو ان کے ساتھ ان کے 3 میچز ہوئے ہیں ابھی تک پاکستان کے, 1996 میں, 2003 میں, 1996 والا پاکستان میں ہوا تھا, 2003 ساؤتھ افریقہ میں, اور پھر 2002 میں جو چیمپئنز ٹرافی سری لنکا میں ہوئی تھی. پاکستان ہمیشہ ان سے جیتا تھا لیکن اب ان کے لیے جیتنا بہت ہی کروشل ہے. یہ اس وقت 3rd نمبر پہ ہے پاکستان آؤٹ آف دا 7 ٹاپ ٹیمز 90 پوائنٹس کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ آسٹریلیا کو 2-1 سے بیٹ کیا تھا او ڈی آئی سیریز میں, تو اس کی وجہ سے. لیکن اب یہ میچز بھی جیتنے بہت ضروری ہیں. تو جناب یہ تھی ہماری ساری خبریں.
ان کو تو اچھی جیتیں گے.
ہاں جیتیں گے انشاءاللہ. تو لیکن ہم تو ہماری تو آنکھیں جو ہیں 28th کے اوپر ہیں نا, انڈیا پاکستان کی میچ کے اوپر. تو جناب جناح صاحب کے اوپر ہم ایک اسپیشل رپورٹ پیش کرنے لگے ہیں, اسٹے ٹیونڈ.
گرل ان ہارٹ مسز ساگا میں آرڈر وائے فون, عمران بھائی کو کال کریں.
انتہائی لذیذ بریانی کھانا ہو یا پھر کڑھائی کھانا ہو یا پھر سٹیکس کو انجوائے کرنا ہے تو آپ آرڈر پلیس کیجئے 9054058383. گرل ان ہارٹ, خوبصورت دانت, با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو. آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمانت. فلنگز, کراؤنز, بریجز, کلیننگ, ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس, فری کنسلٹیشن, دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا, 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ, 299-7466.
گرل اینڈ چک, delicious and healthy grilled chicken and rotisserie chicken sandwiches, burgers, wings, squares, popcorn chicken, salad, garlic bread, sweet dishes. Aapne pahunchna 15 Montpelier Street, Brampton, Mississauga Road and Financial Drive, Commercial Intersection, Grill and Chick, 905-456-0500. Grill and Chick.
گاڑی, گھر یا کمرشل, جیسا کہ بزنس, ٹرکس, ڈیلیوری وہیکلز, کارگو وینز, ورک شاپس, گروسری اسٹورز, ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا. وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار, گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے. یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس, موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم, 416-302-2522, 302-2522. والیا ٹریفک لیگل سروسز سے جناب آر ایس والیا.
کیئرلیس ڈرائیونگ,
سپیڈنگ یا پھر ایکسیڈنٹ,
فیل ٹو ریمین اسٹاپ ایٹ دی سین,
ریڈ لائٹ یا پھر سیٹ بیلٹ,
پرمٹ ڈرائیو وداؤٹ انشورنس,
ریسنگ, اسٹوڈنٹ ڈرائیونگ یا پھر کاٹ وائل یوزنگ فون,
سپیڈنگ,
آر ایس والیا آپ کی ٹکٹ سے نجات دلوائیں گے اور آپ کے پوائنٹس بھی سیو کریں گے. 9054542112, 4542112.
جی
ہاں جی, تو آپ نے جناح صاحب کے کیلیبر, ان کے سٹیٹسمینشپ, ان کی ایجوکیشن, ان کے جو طریقہ کار تھا ان کا, اس پہ تو آپ نے بڑی سٹوریز جو ہیں وہ پڑھی بھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی, اور ہر 14th August کو ہم وہی باتیں کرتے ہیں ان کے ویژن کے بارے میں. لیکن آج جو ہم بات کریں گے, دیٹ از ون تھنگ جو کہ آپ مس ہی نہیں کر سکتے وین یو لک ایٹ جناح صاحب. How well dressed he was.
Amazing.
How meticulously he was dressed always, always. And کسی کے لوٹے ہوئے پیسے پہ نہیں, اپنے پیسے پہ. عیش کی انہوں نے ساری زندگی اپنے پیسے کے اوپر, کسی کا پیسہ لوٹ کے نہیں. اور وہی آج ہم آپ کو باتیں ساری جو ہیں جناح صاحب کی سنائیں گے. جناح صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے بارے میں کہ بہت ہی زیادہ جب لندن میں یہ جاتے تھے تو وہاں سے اپنے سارے یہ سوٹس جو ہیں وہ بنواتے تھے. اور ان کا تو حال یہ تھا کہ جس وقت یہ ہندوستان سے کبھی وہاں پہ بات کرنے جاتے تھے اور جب کسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اور نیچے لابی میں بریکفسٹ کرنے آتے تھے کیونکہ یہ بڑے پاپولر انڈین پولیٹیشین بن گئے تھے تو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریسٹورینٹ میں تالیاں بجاتے تھے ان کا ڈریس دیکھ کے پھر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی انگلش جو ہے اس کو جو ہے وہ ایڈمائر کرتے تھے. جناح صاحب جو ہیں واز ون آف نیو یارک ٹائمز کے بیسٹ ڈریسڈ مین آف 1946 کا ان کو جو ہے وہ اوارڈ دیا گیا. مطلب نیو یارک ٹائمز نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بیسٹ ڈریسڈ آدمی جو ہے 1946 میں جو ان کی رپورٹ ایک آئی تھی وہ جناح صاحب کے اوپر تھی. جناح صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے لارڈ ویول جو کہ وائس رائے آف انڈیا تھے 1943 سے 47 کے بیچ میں, انہوں نے کہا کہ جناح واز ون آف دا, اس وقت وہ موسٹ ہینڈسم نہیں کہتے تھے, ہینڈسمسٹ وہ کہتے ہیں, لارڈ ویول کہتے ہیں, ہینڈسمسٹ مین آئی ہیو ایور سین. جتنی خوبصورت اس کی کلیئر کٹ, اس کے گریشین فیچرز جو کہ ویسٹ کی طرح کے لگتے تھے لیکن اس کا اورینٹل گریس تھا, اور جس طرح سے وہ چلتا تھا اور جس طرح سے وہ بات کرتا تھا, تو 1000 ریزنز ہیں میرے لیے جناح کو ایڈمائر کرنے کے لیے. اور خاص طور پہ وہ اتنا کوئی ویل ڈریسڈ تھا کہ میں نے ہسٹری میں اتنا ویل ڈریسڈ آدمی نہیں دیکھا. بہت ویل ٹیلرڈ سوٹس پہنتے تھے اور کبھی بھی ان کے سوٹس جو ہیں کسی چیپ جگہ سے وہ نہیں لیتے تھے, ایکسٹریملی ایکسپینسو انگلینڈ میں بھی جگہ سے وہ لیتے تھے. وہ کہتے ہیں جی, یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جناح صاحب کے پاس انڈیپینڈنس سے پہلے 200 سوٹس تھے, 200 سوٹس تھے, اور ہارڈلی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی وہ اپنا سوٹ جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہوں, اور ڈیٹیچڈ ان کا کالر ہوتا تھا اور شرٹس کا ڈیٹیچڈ کالر ہوتا تھا اور شرٹ ساری سٹارچ ہوئی ہوتی تھی. اور جس وقت وہ بیرسٹر تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سیم سلک ٹائی پھر سے پہنی ہوئے دوسری بار, کبھی نہیں انہوں نے پہنی. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایون جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے پراپرلی ڈریس اپ کرو کیونکہ میں اپنا آخری سفر پجامہ کے اندر نہیں کروں گا.
Wow.
تو مجھے اچھی طرح سے ڈریس اپ کرو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے ایک آئیکون آف فیشن ان کو مانا جاتا تھا. اینڈ ہی واز ووٹڈ دا ففتھ بیسٹ ڈریسڈ ورلڈ لیڈر آف آل ٹائمز, ایک رپورٹ جو بھی ریسنٹلی آئی تھی. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعہ وائس رائے آف انڈیا جو کہ بالکل آخری دنوں میں جب ان کی ملاقاتیں شملہ کے اندر چل رہی تھیں, وہاں پہ جب یہ ملے تو وہاں پہ وہ ایک برٹش جنرل تھے, ان کی وائف نے ان سے ملاقات کی تو ایک لیٹر لکھا اپنی ماں کو انگلینڈ کے اندر. وہ کہتی ہیں جی کہ ڈنر کے بعد مجھے بڑی خواہش ہوئی کہ انڈیا کے تمام لیڈرز میں سے صرف میں جناح کے ساتھ بات کروں. اتنی کوئی بیوٹیفل وہ انگلش بولتا تھا, اتنی کوئی اس کی گریٹ پرسنالٹی تھی, اتنی کوئی زبردست اس کی نالج تھی, اور وہ کیا بات کرتا تھا, اور برک جو ہے اس کی سپیچز جو ہیں ان کو کوٹ کرتا تھا. اینڈ ہی ہیڈ اے مینرزم آف دا فرینچ ڈو مونیرے. اور کہتے ہیں جی کہ میری زندگی کی جو خواہش تھی اس آدمی کو مل کے جو ہے وہ پوری ہوئی. اس کے علاوہ کیا ہوتا تھا کہ یہ آپ کو پتا ہی ہے, یہ مونوکل پہنتے تھے, وہ جو نہیں ہوتی وہ جو آنکھ کے اوپر مجھے ایک وہ جو شیشہ ہوتا ہے. اچھا, وہاں پہ کیا ہوا, یہ جب اپنے کیسز لڑتے تھے نا تو یہ ڈبل بریسٹڈ جیکٹ پہنتے تھے اور وہ اپنا وہ شیشہ سا پہنتے تھے, وہ نا ایسے کر کے دیکھنے کے لیے, اپنے نوٹس پڑھنے کے لیے. اچھا, ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ انہوں نے وہ پہنا تو وہ جو ہے وہ ان کا گر گیا نیچے نا, تو وہ جو برٹش جج وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ بڑا نا سرکیسٹیکلی ہنسا کہ اب تو یہ میرے آگے جھکے گا. تو جناح صاحب نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی, جو نیچے گر گیا اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور دوسرا لگایا اور اپنے نوٹس پڑھنے شروع کیے. تو لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے عدالت میں جی پھر وہاں پہ تالیاں بجائیں. اور بہت ہی ایکسپینسو کہتے ہیں جی کریون سگریٹس جو ہیں, ابھی یہ جو تصویریں ہماری آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں گے, بہت ایکسپینسو اس زمانے کا یہ کریون اے سگریٹ ہوتا تھا یہ پیتے تھے, اور ہوینا بہت ایکسپینسو ہوینا سگارز پیتے تھے. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی جو ہیں, خاکسار جو موومنٹ کے فاؤنڈر ہیں, وہ یو پی جب جیل سے واپس آئے تو جناح صاحب کے کچھ ایڈوائزرز نے کہا کہ آپ ان کو ملنے کے لیے جاؤ. تو یہ لیاقت علی خان, سر عبداللہ ہارون, پیر علی محمد راشدی, ان کے ساتھ کرول باغ میں جب ملنے کے لیے گئے تو وہاں پہ مشدی صاحب نے ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا, زمین پہ ایک دری بچھائی ہوئی تھی, اور جناح صاحب واز ویئرنگ دا موسٹ ایکسپینسو وائٹ سوٹ ان سلک چائنا, چائنیز سلک, ان چائنیز سلک وہ پہنا ہوا تھا. اور ان کی عادت نہیں تھی, وہ نیچے بیٹھتے نہیں تھے, बड़े स्टाइल से वो कुर्सी पे बैठते थे, लेकिन वहां पे उनको किसी ने कहा कि नहीं ये मशदी साहब के साथ आप नीचे बैठें, तो वो बैठ गए वहां पे उस पे दरी पे। तो उन्होंने मशदी साहब को अपना सिगरेट जो है वो ऑफर किया, ये क्रेवन ए सिगरेट। तो मशदी साहब ने दो, मतलब लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, दो पैसे निकाल के उस आदमी को दिए, जिना साहब को दिए। तो जिना साहब ने कहा ये तुम दो पैसे दे रहे हो मुझे, यानी उस जमाने में गरीबों के लिए तो बड़ी बात थी, बट ही वॉज द टॉप लॉयर ऑफ बॉम्बे। तो यानी उस जमाने में 5,000 रुपए वो अपनी फीस लेते थे भाई केस की, इतने वो इतने सच अ बिग लॉयर। तो दो पैसे दिए, तो जिना साहब ने कहा मशदी साहब को कि व्हाई आर यू गिविंग मी दीज टू पैसास। तो उन्होंने कहा जी हम खाकसार हैं, हम किसी से कोई चीज जो है वो फ्री नहीं लेते। तो जिना साहब ने उनके हाथ से वो सिगरेट ले ली, उसने कहा मेरा ये सिगरेट बहुत एक्सपेंसिव है और तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, दो पैसे से बहुत ज्यादा इसकी प्राइस है, सो यू बेटर गिव इट बैक टू मी। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1930 के बाद फिर उनके अंदर वो कहते हैं जी बहुत चेंज आ गई, फिर उन्होंने वो कराकुल जो कैप थी या जिसको कि अब हम जो है जिना कैप कहते हैं, वो उन्होंने जो है वो फिर पहननी शुरू कर दी है। कभी कभी अपने वेस्टर्न कपड़ों के ऊपर भी वो पहनते थे। लेटर ऑन जब वो पाकिस्तान के लीडर बने तो उन्होंने वो यूपी या दिल्ली के स्टाइल का चूड़ीदार या टाइट पजामा नहीं पहना, एक लूज फिटेड शलवार पहनते थे, ऊपर जो है हल्के रंग की शेरवानी पहनते थे और ऊपर अपनी वो जिना कैप पहनते थे। लेकिन अपने डे टू डे जो ऑफिस के काम होते थे उसमें कभी इनफॉर्मल ड्रेस भी पहनते थे। पैट्रिक स्पेंस जो कि लास्ट चीफ जस्टिस थे अनडिवाइडेड इंडिया के, वो लिखते हैं कि टॉल तो वो थे ही लेकिन टॉलनेस ऑफ अ मैन, यानी कि उनकी ग्रेटनेस के ऊपर वो चीफ जस्टिस जो है पैट्रिक स्पेंस बात कर रहा था कि टॉलनेस ऑफ मैन, इमैक्युलेट मैनरिज्म इन विच ही टर्नड आउट, ब्यूटी ऑफ हिज फीचर्स, एक्सट्रीमली कर्टियस, वेल मैनर्ड, No one gave me a more favorable impression in India than Jinnah. उसका ये कहना था। उन्होंने कहा जी कि कोई भी कहते हैं नो मैन और वुमन लिविंग, मैंने वो कहते हैं जी, वो चीफ जस्टिस कहता है पैट्रिक स्पेंस, मैंने कभी किसी लिविंग आदमी या औरत को उनकी ऑनेस्टी और उनकी ऑनर के ऊपर बात करते हुए कभी नहीं सुना। और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो थे वो थे, उसके लिए बड़ी हीटेड डिबेट्स भी होती थी, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि ये करप्ट है, अनऑनरेबल है या कि ये डिसऑनेस्ट आदमी है। अच्छा, उसमें वो बताते हैं जी कि एक दफा बड़ा वो अजीब वाकया हुआ कि ये फर्स्ट क्लास जो ट्रेन थी जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए जिस वक्त वो शुरू किए, जब अपने दौरे शुरू किए तो ट्रेन में दौरा करते थे और हमेशा फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। तो वहां पे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है वो जमा हो गए, क्योंकि अंग्रेजी में बात करते थे, बड़ी पर्सनैलिटी थी। तो वो जर्नलिस्ट आ गए, वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस के सारे जो लीडर्स हैं और जो इनके वर्कर हैं, ये तो थर्ड क्लास में सफर कर रहे हैं क्योंकि इनके पास तो पैसे ही नहीं है, और आप जो है अपने आप को लीडर कहते हैं और आप फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। तो इनके सेंटेंस ने और इनकी इस वक्त स्पीच ने जो उन्होंने बात की जर्नलिस्टों के साथ, उसने बॉम्बे के अंदर बहुत ज्यादा बल्कि हिंदुस्तान में बड़ी हेडलाइंस मचाई, क्योंकि जिना साहब ने कहा कि कांग्रेस का कोई लीडर हो या दूसरे लीडर्स हो, वो अगर थर्ड क्लास में भी सफर कर रहे हैं ट्रेनों में तो वो मुफ्त कर रहे हैं, मैं फर्स्ट क्लास में सफर करता हूं लेकिन मैं अपनी जेब से पैसा देता हूं, मैं किसी फंड में से कोई एक रुपया भी खर्च नहीं करता हूं। तो इन चीजों ने बड़ी जो है वो हेडलाइंस बनाई। तो ये जो लिखने वाले हैं राइटर, अब वो मेरे पास तो एज अनोनिमस आया है ये बड़ा ही ब्यूटीफुल आर्टिकल, वो कहते हैं इट इज सो सैड कि ये मुल्क जिसको के इस जैसे शानदार आदमी ने बनाया उसकी हमारे पास सिर्फ मेमोरीज ही रह गई हैं, एंड हाउ सैड इट इज कि आज हम 75th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान मना रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी हम जिना जैसा पैदा नहीं कर सके इन 75 years में। तो अल्लामा इकबाल का क्या शेर था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।
क्या बात है।
लेकिन उसके ऊपर किसी दिल जले ने कहा, दीदावर तो पैदा होता है पर मुसलमान के घर नहीं होता। बहरहाल जी, ये थी जिना साहब की एक खूबसूरत याद जो हमने सोचा कल गुजर गया बेशक 14 अगस्त, लेकिन उनको याद किए बगैर हमारा 14 अगस्त शायद कंप्लीट ना होता। तो हमने सोचा कि जी हम आपके साथ उनकी कुछ यादें कुछ शेयर करें।
एक नगमा हो जाए इसके बाद
जी,
एक नगमा हो जाए इसके बाद,
नगमा खूबसूरत समाजत भाई सुनाइए। यस,
ये सलमान एंड अली अमजद अमानत अली की आवाज में ये नगमा है, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे लास्ट ईयर आया था, تو سماعت فرمائیے.
وطن کی مٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر. وطن کی مٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر. ہماری نسلیں قیام تجھ پر, سلام تجھ پر. وطن کی ماٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر. وطن کی ماٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر. تجھے سے دنیا تجھے سے دی ہے, تو ہی فلک ہے, تو ہی زمین ہے. تجھے سے دنیا تجھے سے دی ہے, سلام تجھ پر. وطن کی ماٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر. تو ہے میرے ہنر کا جواز, تو ہے غرور, تو میرا ناز, تو ہے میرے ہنر کا جواز, تو ہے. مجھے ملا ہے, مجھے سلام تجھ پر.
وطن کی ماٹی سلام تجھ پر, سلام تجھ پر, سلام تجھ پر.
ہماری نسلیں کریں گی ہر دم قیام تجھ پر, سلام تجھ پر.
وطن کی
listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 जा quicktrucklube.com QTL बिकॉज वी केयर
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
SNS लॉयर्स को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000 अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747471
यूके स्विट्जरलैंड अते इटली तो बाद खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां दा अगला पड़ा कैनेडा कैनेडा विच खालिस्तान दियां वोटां दा पहला सेंटर ब्रैम्पटन विच लगेगा ब्रैम्पटन विच खालिस्तान दियां वोटां 18 सितंबर दिन एतवार नूं गौर रोड ते स्थित गौर मैडोज कम्युनिटी सेंटर विच पैणगियां होर जानकारी लई संपर्क करो 437-423-2669 जां 437-423-2666
The most glorious, the most exciting, the most star-studded evening is returning for its 8th edition. Hum Awards, once again in Canada. On 24th September 2022, First Ontario Centre. To book your tickets, log on to www.ticketmaster.ca. For Canadian sponsorship, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca.
Taza Milton Halal Food Festival.
August 21st, Sunday from 12 p.m. to 10 p.m.
Free entry, free parking, musical show with the Fakhir live performance. आइए 75th सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मिल के मनाते हैं मिल्टन कम्युनिटी स्पोर्ट्स पार्क 805 सेंटा मारिया बुलेवार्ड इन मिल्टन फॉर स्पॉन्सरशिप एंड स्टॉल बुकिंग कॉल अमेर शमसी 416-662-7861
जी साहब आई दास वेलकम बैक अगेन एंड सब 6:56:44 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और शाजी अभी मेरे साथ बैठी हैं यहाँ पर साहब वी गोना टॉक अबाउट पाकिस्तान 14th of August तो निकल गया मगर हमारे लिए पूरे पाकिस्तानियों के लिए ईच एंड एवरी डे इज 14th of पाकिस्तान उस जज्बे से ही हम चलते हैं चाहे पाकिस्तान में रह रहे हों चाहे पाकिस्तान से बाहर रह रहे हों वो जज्बा जो है हमें कभी ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि वी आर ऑल आर
फ्रॉम पाकिस्तान
पाकिस्तान
यस
हाँ जी
अच्छा जी आज जबरदस्त किस्म की खबर है और हम मैं कोशिश करूंगी इनको साहब को लाने के लिए ये एक थोड़े दिन पहले जनाब हमारे पास एक ऑन्टेरियो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज आई थी इस प्रेस रिलीज की हेडिंग थी ऑन्टेरियो वेलकम्स $14.8 million इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट गुड पेइंग मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स राइट इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि एक कंपनी है ग्रीन लिट उसका नाम है ऑन्टेरियो बेस्ड कंपनी है देखकर वो सारी चीजें जो है वो चाइना से बनवाती है अच्छा ये जो अब इसकी ये जो कंपनी है ये बनाती क्या है ये एक कंपनी जो यहां पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में है ये बनाते हैं प्लेट्स बोल्स कॉफी कप्स लिड्स तो ये सारा कुछ जो है इन्होंने जैसे वो रखे होते हैं ना बैक ऑफिसेज, वो कराची में सॉरी चाइना में रखे होते हैं, वहां पे रखे हुए थे, वहां से ये सारा कुछ आ रहे थे। अब इन्होंने अनाउंस किया थोड़े दिन पहले कि नहीं, हम ये सारे का सारा जो है इधर कैनेडा में ऑन्टेरियो में लेकर आ रहे हैं और ये हाँ जी इधर जो है ये फैसिलिटी हम करेंगे। और इसको फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है आपको इसको हम आपको ये मैन्युफैक्चरिंग आप ला रहे हैं यूनिट जो है इतना बड़ा तो उसको हम आपको सपोर्ट करेंगे। इन्होंने कहा जी कि हम ये सारा यहां पे सेटअप करेंगे और इसके अंदर अंडर रीजनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम ये सारा कुछ यहां पे सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें से एक हम बनना चाहते हैं। और ये एंड यू विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड कि इस कंपनी को सेटअप जो है एक पाकिस्तानी लड़के ने किया है, उसका नाम है आदिल कवि, उसको हम इंशाल्लाह यहां पे लेकर आएंगे।
अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ऑन द लूस
लूज टॉक ऑन द साइड लाइन्स ऑफ सीरियस टॉक लूज टॉक
सीरियस टॉक के ऑपोजिट में
हाँ
हो जाएगा।
जैसे वो कहती है ना वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो इवेंट चल रहा था, साइड लाइंस पे इंडिया पाकिस्तान के लीडर्स भी हुई, तो ये साइड लाइंस पे हम जरा लूज टॉक करेंगे।
साइड लाइंस बता दूं आपको,
हाँ, लूज टॉक
लास्ट वीक मोस्ट प्रॉबली इट वाज ऑन फ्राइडे आई थिंक फ्राइडे को जब आप हॉलीडेज पे थी ना
जी। नहीं मैं काम कर रही थी फ्राइडे वाले दिन,
अंडरलाइन कर दें हॉलीडेज पे थी, जब आप हॉलीडेज पे थी ना यू एंजॉयिंग योरसेल्फ, हम तो काम कर रहे थे यहाँ पर तो वो उस दिन हमारे प्रीमियर डक फोर्ट साहब इस कंपनी पे गए विच इज नॉर्थ ऑफ बेयर,
यस दैट्स राइट।
तो वहां पर वाइल ही वाज अनाउंसिंग दैट वी आर गोइंग टू यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी